अमृता के कवच को क्या करो जहाँ नम्रता है बाबा ने कहा वहाँ स्नेह और सहयोग स्वतः ही मिलते रहेगा दूसरों को। नम्रता अर्थात किसके विरोध में है? अहंकार के विरोध में, अभिमान के विरोध में। जहाँ अभिमान नहीं, जहाँ अहंकार नहीं, वो है नम्रता। नम्रता का अहंकार आ सकता है? नम्रता का तीन सन्यासी रहते हैं, तीन सन्यासी हाँ, तो नम्रता का तो आ सकता है। तीन सन्यासी अलग अलग मठ के, अलग अलग आश्रम के एक यात्रा पर जाते रहते हैं, तो वो बीच में एक जगह रुकते हैं और बैठते हैं और चर्चा करने लगते हैं अपने अपने आश्रम और मठ के बारे में। तो पहला सन्यासी करता है, कहता है कि हमारा जो आश्रम है उसमें जितना ज्ञान है, प्रचंड ज्ञान, अध्यात्म का जो ज्ञान हमारे आश्रम में, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा आश्रम होगा कि जिसमें इतना ज्ञान होगा। तो पहला सन्यासी कहता है कि हमारे आश्रम ज्ञान में सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा है। दूसरा सन्यासी कहता है ज्ञान से क्या होता है केवल? तो नम्रता की चर्चा चालू है, क्या नम्रता का अहंकार आ सकता है? तीन सन्यासी अलग अलग आश्रम से निकलते हैं, एक जगह रुकते हैं, फिर यात्रा पर होते हैं, एक जगह रुकते हैं। पहला कहता है कि हमारे आश्रम में बहुत ज्यादा ज्ञान है, जितनी ज्ञान की चर्चा वार्तालाप हमारे आश्रम में होती है शायद ही कोई ऐसा आश्रम होगा। और किसी आश्रम में होगा। दूसरा कहता है केवल ज्ञान से क्या होता है? हमारे आश्रम में जितनी तपस्या की जाती है उतनी और किसी आश्रम में नहीं की जाती है। जितना तपस्या का वातावरण हमारे आश्रम में है उतना और किसी आश्रम में नहीं है संसार में। तीसरा कहता है चाहे तुम्हारे पास कितनी भी तपस्या हो या कितना भी ज्ञान हो, पर हमारी आश्रम में जितने हमारे जो सेवाधारी नहीं हमारे आश्रम के जो भी साधु है और योगी है और तपस्वी है, वो जितनी नम्रता उनमें है वो दुनिया में टॉप पर है। इतनी नम्रता शायद ही और किसी में हो सकती।
ज्ञान का सार है
हाँ, पर उसका भी उसका भी तो है ना, मैं है ना, तो मैं जहाँ है वहाँ तो एंट्री नहीं आगे, मैं रोक देता है आत्मा। तो आज बाबा ने क्या कहा, बहुत सारी बातें। आज तो संजय भाई सुनाने वाले हैं। आपने बोला था,
बोला था
वहीं से सुना दो। चलो पीछे से चालू करते हैं। कमलेश भाई क्या कहा बाबा ने, ग्रुप नंबर दो, दुनिया में कौन से नजारे हैं? अशांति और दुख के नजारे। तो जितने वहां दुख और अशांति के नजारे बढ़ेंगे उतना ही इधर क्या हो जाएगा, जय जयकार नहीं हो जाएगा। इधर वैराग, बेहद का वैराग, जितना संसार में दुख बढ़ेगा और जितनी संसार में अशांति बढ़ेगी, अशांति के नजारे देखोगे उतने तुम्हारा वैराग भी बढ़ता जाएगा, बेहद का वैराग। पहले से ही बड़ा हुआ हो, पहले से ही दुनिया है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके विनाश का क्या प्रश्न है? वो है और उसका विनाश हो ये दूसरी बात है, परंतु हमारे लिए दुनिया तो जैसे है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। जैसे वो मम्मा का उदाहरण देते हैं ना, रमेश भाई गाड़ी चला रहे, निर्वेर भाई बाजू बैठे हैं, मम्मा पीछे बैठी हुई है और वो लेके जा रहे हैं मम्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उस समय प्रदर्शनी की सेवा कैसी हुई इसके बारे में सारा माहौल था यज्ञ में। तो बीच में देखा रोजर्स कंपनी की एक एड लगी हुई थी, दारू की बोतल ऐसी कि जिसमें से दारू गिर रही है, एक ग्लास नीचे है, वो ग्लास में पूरा गिरता है, ग्लास फिर खाली हो जाते हैं। तो निर्वेर भाई और रमेश भाई बोल रहे कि ये आइडिया बहुत अच्छी है, अगर हम इसी तरह से कुछ ज्ञान की कुछ प्रदर्शनी बनाए जाए तो कितना अच्छा होगा। तो पहुंचे, फिर मम्मा को पूछा, मम्मा आपका क्या ख्याल है उसके बारे में, वो जो देखा रास्ते में उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ऐसी कोई प्रदर्शनी हम बना सकते हैं ज्ञान से संबंधित? मम्मा ने कहा, मम्मा अपनी आंख केवल जब बाबा सामने होते तभी ऊपर करती है, बाकी इस संसार का अस्तित्व मम्मा के लिए है ही नहीं। इस संसार को देखते हुए भी मम्मा इस संसार को नहीं देखती। तो संसार असार और देह मिट्टी, उस दिन मैं कह रहा था वैराग्य अर्थात वैराग की परिभाषा है इस देह को मिट्टी समझना और इस संसार को असार समझना, ये वैराग की परिभाषा है। देह कुछ है ही नहीं, देह का कोई आकर्षण नहीं क्योंकि मिट्टी है, और ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, निरस लगे। पर तीन चार दिन पहले वरदान था ना, एक बाप में ही सर्वरस और सब कुछ निरस, बेमजा, कोई मजा ही नहीं है इस संसार में। रसराज रसानंद एक में अनुभव बस। तो जैसे जैसे संसार में दुख और अशांति के नजारे बढ़ेंगे तुम्हारा बेहद का वैराग बढ़ते जाएगा। उधर है हाहाकार, तुम्हारा है जय जयकार, हाहाकार अर्थात जाना। तो उधर है हलचल और तुम हो अचल, तुम्हारे लिए जैसे कि ये सब क्या है, तुम्हारे लिए ये तैयारियां हो रही है, तुम्हारे लिए ये सब क्या है, खेल है, क्योंकि तुम साक्षी हो देखते रहते हो, तो साक्षी हो जब देखते हो तब मजा आता है। वो चिल्ला रहे, वो रो रहे, वो तड़प रहे, पर तुम अप्रभावित, क्योंकि बहुत बार देखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए नथिंग नहीं हुई, क्योंकि तुम ये देखते हुए भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहीं और लगी हुई है, किसी और दृश्य को देख रही है उस समय। तो बाबा ने यहां संसार के विनाश की बात कही है। सुबह में डॉक्टर मानस से कह रहा था कि एक कोई मूवी बनी है लास्ट डेज ऑन अर्थ, नीचे भी अवेलेबल यज्ञ में भी है, तो उसमें विनाश कैसे होगा वो दिखाया हुआ है, सात प्रकार जिससे विनाश होगा, लीस्ट से लेके तो मोस्ट, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। उसमें से सबसे टॉप पर जो कारण रखा है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान जो बढ़ रहा है धरती पर, धरती के ऊपर, वो भूमंडलीय उष्मीकरण जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो पहला कारण होगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो पानी होगा, पानी समुद्र पूरा धरती के जहां जमीन है वहां आ जाएगा और विनाश होगा। दूसरा कारण एक बताया महामारी, कोई ऐसी बीमारी आएगी कि जो बीमारी सबको नष्ट कर देगी, प्लेग या ऐसी कोई और वापस आएगी ऐसी कोई बीमारी। डॉक्टर तो दूर की बात है, डॉक्टर ही खत्म हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। कोई ऐसी बीमारी आएगी, न्यूक्लियर वॉर, आणविक युद्ध होंगे कुछ ऐसे कि जिससे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सुपर वोल्केनोज, सुपर वोल्केनोज अर्थात ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटेंगे। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड अर्थात ग्रही का, कोई ग्रह धरती से टकराएगा, जैसे माया सभ्यता में कहा जाता था ना 2012 में, एक ग्रह टकराएगा और धरती नष्ट हो जाएगी, उसको एस्टेरॉइड कहते हैं। ग्रही का, वो कोई ग्रही का टकराएगी, ग्रह ग्रही का और धरती नष्ट हो जाएगी। फिर ब्लैक होल, गामा बर्स्ट, ये अलग अलग कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं उसमें। सुपर, फिर मशीन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कहा है जो मशीन मनुष्य ने बनाई है, इंटेलिजेंस, साइंस इंटेलिजेंस जो है, जो भी मशीन्स बनाई है मशीन्स के द्वारा ही विनाश हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं मूसल, यूरोप यादव जो है वो मूसल निकलेगी और विनाश कर देगी। तो ऐसे ये सात कारण बनाए हैं और ये अभी सामने है। तो ये अभी हमारे जो दिन है, उस मूवी का नाम ही है द लास्ट डेज ऑन अर्थ, ये हमारे अंतिम दिन है इस धरती पर, और अब धरती नहीं रहेगी। तो बाबा ने कहा मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगा।
उसका डेट दे दिया था
2020, बराबर 2020, उसका जो नाम है ना एबीओ का जो निकाली हुई मूवी है 2020, कई सेंटरों पर भी दिखाई गई है। नहीं, बाहर की अपनी, हाल ही इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, ओनली इंग्लिश। फिर क्या कहा बाबा ने, फरिश्ते के बारे में कहा। क्या कहा, फरिश्ता अर्थात
डबल लाइट,
फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह से रिश्ता नहीं, फरिश्ता अर्थात इस देह से भी परे, फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से कोई आसक्ति नहीं, देह में बस निमित्त मात्र कर्म किया और उपराम। फरिश्ता एक स्थिति है, फरिश्ता मन की एक अवस्था है, बहुत ऊंची स्थिति है, वो हल्की है। बाबा ने कहा ना, जो हल्की चीज है वो उड़ती है, अगर नीचे है तो जरूर कोई बोझ है। तो फरिश्ता मन की स्थिति, हर वो स्थिति जो जहां पर देह और देह का भान नहीं है वो फरिश्ता स्थिति है। इस देह से परे, इस देह से उपराम, इस देह की जो आकर्षण, इस देह की जो आसक्ति है वो कम कम हो रही है। हमारी साधना का मापदंड यही है कि हमारा इस देह से जो तदात्म है, जो लगाव है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो हम अपने आप को अलग कर सक रहे हैं। कितना जल्दी हम अलग करते, बस हम उसी के लिए फोकस रहे जो हम करने आए हैं। उदाहरण के लिए अव्यक्त बाप दादा स्वयं, जब भगवान स्वयं इस धरती पर आता है तो उसके आसपास क्या कुछ नहीं होते रहता है, परंतु वो कितना फोकस्ड रहता है, वो वही चीज करता है जो वो डिलीवर करना चाहता है। उसका जो स्पीच है उसको वो डिलीवर करना है, उसका जो संदेश है उसे देना है, वो उसी में फोकस रहता है पूरा। उसे वहां क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या क्या बता रहा है, उससे वो कितना डिटैच्ड है, उस देह से भी वो कितना डिटैच्ड है, उस देह से मूवमेंट भी कितनी कम है उसकी, पर वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। उसको बस वो कहना है जो वो कहने आया है, उसको सहजता भी उसमें है, उसमें। तो वो हमको अपने अंदर धारण करना है। कितना बैठ रहा है, भाषण दे रहा है, भाषण देते देते बोलते बोलते भी वो साक्षी है, बोलते हुए भी जैसे नहीं बोल रहा है, जैसे अकर्ता उसके लिए गायन है भक्ति में, कि भगवान अकर्ता है। वो प्रैक्टिकल में दिखाई देता है कि वो बोल रहा है पर नहीं बोल रहा है, देख रहा है पर नहीं देख रहा है, सुन रहा है पर नहीं सुन रहा है। पग पुण्य चलो इस सुनई बिनु काना, ये जो भगवान का गायन है वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। क्या कहा,
उनके सामने कुछ भी नहीं है, जैसे कि आठ में मक्खी बैठ गए हैं, मुरली चला ही रहे हैं, और पूछने भी गया जैसे कि हटाने गया तो भी चला रहे हो, इधर मुंह से
उसको उस देह से कितना कम लगा, जिस तन में वो आया है उस तन से भी उसे बहुत कम लगा। तो जो उसकी अवतरण है वो हमारी स्थिति हो, जो उसका अवतरण है उस तन में और उस तन से वो कितना अनासक्त है, वही स्थिति फरिश्ता स्थिति है कि मैं इस तन में हूं परंतु इस तन से लगाव रहित। भगवान ने कहा ना आए निमित्त मात्र कर्म किए और उपराम, तो इसके लिए हमें ज्यादा वहां रहना पड़ेगा। जैसे अभी ज्यादा यहां रहते हैं ना तो वहां की याद करनी पड़ती है, तो ज्यादा वहां रहे तो वहां से खाली नीचे आए, कर्म किया और चले ऊपर। उस वो जो वातावरण है उस वातावरण की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे उसको बोलने के लिए उससे कभी 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 तो बाबा अव्यक्त बाबा कभी आए थे, बोला ही नहीं कुछ, मतलब दृष्टि देकर चले गए। मतलब वो उसकी दृष्टि बहुत शक्तिशाली है परंतु सबको थोड़ा सा खाली खाली लगा। फिर
नहीं बोला,
हाँ नहीं बोला
तो,
तो वो तो अपना काम वैसे ही कर सकते क्योंकि वो जहां से आता है वो स्थान वहां पर आवाज नहीं है, उसको उसकी ज्यादा आदत है। और कितना लंबा समय वहां रहता है और एकदम आके उसको बोलना, वो जैसे कि ये करना पड़ता है। तो वैसे हम भी ज्यादा समय ऊपर रहे तो जब बोलने लगे तो ऐसे लगे कि अभी नीचे आके बोलना पड़ रहा है। ऐसा अनुभव हो हमें आवाज में आने की, जैसे अभी मेहनत करते आवाज से परे जाने की, वैसे तुम्हें मेहनत करे आवाज में आने के लिए। तो ये था बाबा ने फरिश्ता स्थिति के लिए कहा और साक्षी स्थिति। तो इसमें दो समान है कि मैं साक्षी हूँ,
वरदान में भी फरिश्ते का,
हाँ बहुत जगह है, मैं साक्षी हूँ। साक्षी अर्थात साक्षी अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, उपराम अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है कि जो कुछ हो रहा है उसमें इंटरफियर नहीं करना है, जो कुछ हो रहा है उसको खाली देखना है। मतलब वो है साक्षी अवस्था। और एक है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति यहाँ पर बाबा ने स्पेसिफिक कहा है देह के लिए, जिसका देह से रिश्ता नहीं। सबसे गहरा रिश्ता आत्मा का किससे है? देह से। क्यों है? क्योंकि आत्मा उसके बिना कुछ कर नहीं सकती, उसी के साथ है और उसी के साथ अभी नहीं, कई जन्मों से रह रही है। तो इस देह से वैराग उत्पन्न हो जाए, इस देह से वैराग उत्पन्न के लिए इस देह की वास्तविक दशा क्या है, देह वास्तविक में है क्या, उसको समझना पड़ेगा। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो स्त्री और पुरुष भास रहे हैं वो है नहीं, केवल मिट्टी मात्र है। है क्या? अस्थि पंजर मलमूत्र इससे भरा हुआ है, यही है। उसमें अनेक विषाणु कीटाणु जंतु उसमें भरे हुए, अनेक रोग उसमें भरे पड़े हैं। तो निरंतर यह चिंतन करना कि यह देह अविनाशी है, यह देह जो है केवल एक भ्रम है, उसका सौंदर्य वो सुंदर है ही नहीं, भ्रम मात्र है। मृत्यु का चिंतन कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, बीमारी का चिंतन,
बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह, बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह, अंदर बहुत कुछ चल रहा है।
जो खाना पूछता है ना, कौन बता रहा था? यही बता रहा था ना कोई कि खाना खाना या खाना पूछता है शरीर को कि तुम में जाने से पहले मैं कितना सुंदर था और तुम में जाते ही क्या हो गया, ये कैसी मशीन है, ये कैसी फैक्ट्री है ये शरीर, ये क्या से क्या बना देता है इसको। परंतु इसी में मोह है, इसी में आसक्ति है। अपना तो छोड़ो, दूसरे के देह में आ सकती है। बाबा कह रहे फरिश्ता अर्थात जिसे देह से ही रिश्ता नहीं है, सारा पुरुषार्थी यहां है, यही पवित्रता है। देह से कम वो जो हम और देह इसके बीच में एक खाई उत्पन्न हो जाए संकल्पों में, कम से कम संकल्प वो हो जो देह से संबंधित हो, ये है पुरुषार्थ। तो वो है फरिश्ता स्थिति। फिर फर्स्ट ग्रुप से क्या कहा? पहला ग्रुप संगम युग है, सदा संगम युग पर अपने आप को संपन्न भाव का वरदान। संगम युग है वरदानी युग, संगम युग है असंभव को संभव करने का युग, संगम युग है परिवर्तन करने का युग। तो अपने आप को क्या समझते हो बाबा ने कहा? हीरो हीरो एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन समझते हो? ऐसा नशा रहता है, नशा बोला ना, नशा रहता है ये संपूर्ण कल्प के इस ड्रामा के हम हीरो हीरोइन एक्टर है अभी भी कंबाइंड। क्या कहते हो स्वयं को? शिव शक्ति। तो जो अभी कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे तो मायाजीत होंगे, अभी भी कंबाइंड और भविष्य में भी कंबाइंड विष्णु रूप, तो दोनों रूप कंबाइंड, डबल कंबाइंड बाबा ने कहा, कंबाइंड वो भी डबल कंबाइंड। तो मैं शिव शक्ति हूं ये समान है, तो जब कहते ही हो तो उसमें दो आ जाते हैं, शिव और शक्ति दोनों समाये हुए हैं। शिव और शक्ति, शिव को शक्ति को अर्धांगिनी कहा जाता है, शिव की अर्धनारीश्वर, शिव दिखाते हैं ना आधा आधा, दोनों एक है जैसे। तो मैं कंबाइंड स्वरूप हूं माया जीत, जो कंबाइंड है वो माया जीत है। फिर बाबा ने वहां कुर्सी की बात कही, क्या कहा कुर्सी के बारे में? संसार के लोग अपनी कुर्सी को छोड़ते नहीं है,
अतीन्द्रिय सुख,
अतीन्द्रिय सुख दुखदाई है। बाबा तुम्हें कौन सी कुर्सी देते हैं, कौन सी सीट देते हैं? तीन बताए, एक तो सुखदाई स्थिति की सीट, दूसरी परिष्ठा स्थिति की सीट पर रहेंगे तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, श्रेष्ठ स्थिति की सीट, वो अपनी स्थिति कुर्सी को नहीं छोड़ते, वो है कांटे की, कांटों की कुर्सी, फिर भी नहीं छोड़ते वो। तो तुम क्यों छोड़ते हो?
और भी एक सीट के लिए खुशी का,
हाँ वही श्रेष्ठ स्थिति की सीट, श्रेष्ठ स्थिति की सीट, परिश्ते की सीट, या कहो सुखदाई सीट, ये बाप दे देते हैं, बाप वर्षे का अधिकारी बनाते हैं, अविनाशी वर्षा है वो भी सहज बनाते हैं। केवल एक ही बीज है, कौन सा बीज है? हम बाप के और बाप हमारा, ये बीज है, इस बीज को पकड़ो, टाल टालियों को नहीं पकड़ो, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल है, बीज को पकड़ना आसान है। हाँ वो बीज रूप स्थिति ही बोला है वरदान में उस दिन, बीज रूप स्थिति जो है वो ऐसी स्थिति है कि सबसे शक्तिशाली स्थिति है, उसमें अगर स्थित हो तो जैसे वो बीज को पानी देने से सारे वृक्ष को पानी हो चला जाता है, वैसे लाइट का पानी, स्नेह का पानी, सॉरी स्नेह का पानी, आज उसमें लाइट का था, आज से आज अलग है,
लाइट का पानी का वरदान,
वरदान का ही बता रहा हूँ मैं, वरदान की बात है, वो दूसरा बीज था, वो बीज रूप स्थिति था, ये जो बीज आज जो बोला है वो है हम बाबा के हमारा, वो हमारा, हम है तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे, तू मात पिता बन साजन सखा बन, वो प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा, दिल के मंदिर में तुमको बिठा के हर पल करूं दीदार तुम्हारा, गीत है ना, कितना अच्छा गीत है, इस तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका वो तख्त फीका, कर तू हमारा, कर तू हमारा सब कुछ हमारा, बदले में तेरे कुछ और ना लू, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे गीत है ना, मिलन के ये दिन क्या है, और बहुत अच्छा वाक्य है उसमें मौजों के दिन मिलन की ये रातें बीते कभी ना थम जाए हरदम, गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे, बाबा ये कितने प्यारे, कितना सुंदर गीत है, 1991 में लिखा हुआ गीत है, तपस्या सॉन्ग 1, एक माता ने गाया हुआ है, उसकी आवाज में भी इतना प्यार है, वो गीत के बीच में जैसे कि आवाज में जैसे वो रोने में आ गई है, बीच में ऐसा आ जाता है रुक रही है वो, हाँ मूर्ति माता है उसका नाम, 91 में तपस्या सॉन्ग 1, मूर्ति माता सॉन्ग नंबर 3 तो उस आवाज में ही कितना, मतलब बहुत कम म्यूजिक है परंतु आवाज में अति प्यार है, समाई हुई है जैसे स्नेह में, तो बाबा ने कहा ये जो है कि हम उसमें है और वो हम में है, ये बीज है, इस बीज को पकड़ो, बाकी जो कुछ है वो विस्तार है, उसको पकड़ना मुश्किल है। सदा लवलीन रहो, लवलीन बाबा ने बनाया हो, भगवान की भाषा है, लव और लीन, इंग्लिश का और हिंदी के दो शब्द मिला दिए। ऐसा शब्द संसार में और कहीं नहीं मिलता किसी भाषा में, ये भगवान की भाषा है, नए शब्द की रचना की है बाबा ने, लव लीन रहो, उन्होंने लीन कहने को कह दिया, आत्मा परमात्मा में लीन, यहां लव में लीन। फिर लास्ट लाइन बाबा का फेवरेट प्रश्न कि कौन कहां से आया है, दूर से कौन आया है, हमेशा विदेशियों के सामने बाबा इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, फिर उसे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए, क्या तुम कहां से आए हो, जर्मनी से, तुम अमेरिका से, जापान से, सबसे दूर से कौन आया। हमेशा मूल्य में आता है ना, अव्यक्त वाणी में हमेशा आता है, ये बहुत बार आता है, सबसे दूर बाप उस लोक से आया जो इस लोक से परे है, न तद भाषे ते सूर्य न शशांक न पावको तद धामम परमम मम। गीता में लिखा है कि वह धाम, न तद भाषे ते सूर्य न शशांक न पावक, जहां न सूर्य है न चांद है न सितारे, तद धामम परमम मम, वो मेरा धाम है, मैं वहां से आया हूं जो सबसे दूर है, तो मैं वहां से आया। और बाप को काम ही क्या है, बहुत ही सेंटिमेंटल है ये, बहुत ही इमोशनल,
बच्चों का भी काम वही है,
बाप का काम ही क्या है, बच्चों को याद करना। उसमें भी और एक बहुत जबरदस्त महावाक्य है, कौन सा है मानस, जाने या ना जानो, बाप सबको प्यार करता है, तुम जानो या ना जानो, तुमको पता भी नहीं पर वो तुमको प्यार करता है, चुप चुप के प्यार
करता,
तुम गुड मॉर्निंग करो या ना करो, मैं तो तुमको गुड मॉर्निंग गुड नाइट करता ही हूँ। बाप को काम ही क्या है, बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते, बाप को बच्चों के बिना सूना सूना लगता है, खाली खाली लगता है, दिल नहीं लगता है, बेचैनी होती है, बेकरारी सी छा जाती है,
सूना सूना लगता है, बोल रहा था जाने
एक बार जब जाने में निकल गए, मुरली बाबा ने कहा बाप को जब भी फुर्सत मिलती है तो बाप बच्चों को
याद करता है, और वो हमने चर्चा की थी इधर, ये फुर्सत मतलब टाइम, फुर्सत नहीं टाइम बोला था बाबा ने, अभी दो तीन टाइम मिलता है बाप को, एक टाइम मतलब वो फिर वो करता क्या है। वो इटर्निटी में रहता है, वहां तो टाइम है ही नहीं,
सबको देखता है, भक्तों को भी देखता है,
सबको देखता है, अपना टाइम टेबल। अच्छा मैं क्या क्या करता हूँ सुबह, तो पहला प्रश्न तो ये है कि वहां दिन है रात है, वहां समय है कि वहां समय है, समय तो यहां है, टाइम का डायमेंशन इधर है, वहां समयातीत अवस्था है, वो सवेरे दोपहर शाम वहां है ही नहीं, वो स्पेस है, वहां 24 घंटे तो यहां है, वहां कुछ भी नहीं है, ये सब बातें। ब्रह्मा का दिन शास्त्रों में देखे जाए तो कितने हजारों लाखों वर्ष है, वो कैलकुलेट करने लगो तो बुद्धि भारी हो जाती है, इतने बड़े दिन है वो ब्रह्मा का, एक 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 एक।
तो बाबा की एक बात है कि सवेरे शाम का हिसाब कैसे बनेगा, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ सवेरे होते रहते हैं, कंटिन्यू रात भी होती रहती है
यहाँ पे,
रोटेशन में
ना, वो तो जिस लोक में वो रहता है वहाँ ये कोई भी चीज नहीं है, वहाँ समय नहीं है, समयातीत है, वो स्पेस नहीं है वहाँ पे, कोई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब कुछ भी बातें नहीं है वहाँ, वो उस लोक में रहता है। तो ये और भी कुछ है वहां पे, हाँ ये यहाँ पूरा हुआ, चलो अभी मेन मुरली पर आ जाओ। कहाँ किससे मिलने आए हैं आज, मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, नंबर वन बेहद का सेवाधारी कौन है, ब्रह्मा। तो बेहद के सेवाधारी में क्या होना चाहिए, बेहद के गुण होने चाहिए, सबसे पहला ही महावाक्य है कि बेहद के सेवाधारी अर्थात बेहद के गुण, बेहद के सेवाधारी अर्थात क्या क्या, अभी आगे बहुत सारी बातें, बेहद अर्थात क्या, सबसे पहले तो बेहद को समझने की आवश्यकता है, बेहद मतलब जहां हदे नहीं, जहां सरहद नहीं, जहां बाउंड्रीज नहीं, सीमातीत, जहां कोई सीमाएं नहीं, जहां छोटा दृष्टिकोण नहीं है, जहां बहुत विशाल दृष्टिकोण है, वो बेहद, अनलिमिटेड लिमिटलेस,
सारा एक
एक ही है सब कुछ, बहुत ऐसा मतलब उसमें कोई छोटी छोटी ये नहीं है, बेहद हदे ही पार कर दी है सारी। हाँ वही अभी हम आएंगे बेहद में क्या क्या, तो बेहद में क्या क्या, सबसे पहला बेहद की देखने की बेहद की दृष्टि, सबको देखता है वो एक साथ। उसके लिए ये नहीं है कि ये ज्ञानी बच्चे अज्ञानी बच्चे, ये बीके ये नॉन बीके, ऐसे कुछ नहीं देखता है वो, सब ब्रह्मा के लिए कहा है ये। तो उसकी कैसी दृष्टि है, बेहद की, समदर्शी, जिसको समदर्शी कहा जाता है हिंदी में। तो बेहद की देखने की दृष्टि, फिर सुनना और बोलना, अनहद बोल, अनहद बोल, सुनना और सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, अनहद बोल, अनहद बोल अर्थात
हम सो सो हम,
अनहद अर्थात क्या, अनहद बहुत सुंदर शब्द है, नाद होते हैं ना, अनहद नाद, नाद सुने नाद अमहनद का अब तो निरंतर है, गीत है ना, प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है। अनहद अर्थात नाद, दो नाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आहत नाद, एक होता है अनहद नाद। आहत नाद अर्थात, नाद अर्थात स्वर, आवाज, आवाज जो है जो घर्षण से, दो चीजों के घर्षण से, दो चीजों के टकराव से जो भी आवाज उत्पन्न होता है वो आहत, आहतवाद नाद कहा जाता है उसको, जो कि सुनाई देता है इन कानों से। उसमें फिर वो सब कुछ आ जाएगा जो इस भूमंडल पर जो भी आवाज होता है, जो हवा का आवाज हो रहा है वो भी आहत नाद है, जो तारे टूट रहे हैं उनको भी किसी यंत्र द्वारा अगर सुन सकते हो तो वो भी आहत नाद है। परंतु ऋषियों का ऐसा मानना द्वापर युग से था कि इस ब्रह्मांड, जो इस सृष्टि को ब्रह्मांड कहते थे, इस ब्रह्मांड में ऐसा एक आवाज है जो निरंतर गूंजते रहता है बिना किसी के बनाए क्रिएट किए। उसके लिए कोई घर्षण की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी टकराव की आवश्यकता नहीं है, बिना टकराव के बिना निर्माण के जो आवाज गूंजता रहता है उसे अनहद नाद कहा गया था। और ये जो अनहद नाद है, उन्होंने इस नाद को सुनने का प्रयत्न किया, अनुसंधान किया, जिसको नादानुसंधान कहा जाता है। ये जो प्रयत्न, जो रिसर्च किया, उन्होंने धीरे धीरे पाया कि ये जो नाद है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, एक शब्द है उसके साथ थोड़ी मिलती है, अ उम ओम के साथ, फिर तब से ओम की रचना हुई। जैसे ओम देखा गया कि ओम की जो फ्रीक्वेंसी है और जो अनहद की जो फ्रीक्वेंसी है, जो सृष्टि में जो नाद गूंज रहा है वो उन्होंने सुना, और उन्होंने क्या कहा, जो सुना क्या वो बोल भी सकते हैं। फिर प्रयत्न किया कि कोई तो एकदम शब्द होगा कि जिससे वो निकले और वही फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हो और वही शांति का अनुभव। तो तब से ओम की ध्वनि उन्होंने गाना चलो, हाँ वो समुद्र कहो या संपूर्ण सृष्टि से कहा, ये गूंजते रहती ओ, ये ओम तो मनुष्य का बनाया हुआ है, पर उन्होंने कहा कि एक आवाज ऐसी है कि जो इन कानों से नहीं सुनी जा सकती, वो अनुभव की जा सकती है, और वो वही अनुभव करता है जहां पर सारे विकार, मल, विक्षेप, आवरण, ये तीन चीज बताते हैं वेदांत में। सारा मल और जो विक्षेप और जो आवरण है वो हट जाए, तब आत्मा पवित्र जब होती है तब ये आवाज सुन सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये ओम की ध्वनि जो है उसके साथ थोड़ी बहुत मिलती है, और फिर ओम की साधना चालू हुई, फिर ओम का उच्चारण करो तो मन शांत हो जाता है, ये सारा जो है। तो अनहद अर्थात वह नाद, यहां पर बाबा कह रहे हैं अनहद बोल, अनहद बोल अर्थात जो परमात्मा के बोल है उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, मतलब मुरली के लिए कहा गया है, अनहद बोल अर्थात मुरली, परमात्मा महावाक्य। तो अनहद बोल जो है वही बोलना और वही सुनना, ये है बेहद का सुनना या बेहद का बोलना। आगे बोलना हो गया, फिर बेहद के संबंध संपर्क, संपर्क में आते हुए भी बेहद का संपर्क संबंध है। चेकिंग में ये पॉइंट है कि हमारे जो संबंध है वो सारे बेहद के हो, उसमें लिमिटेशंस ना हो, छोटी छोटी बातें ना हो। फिर संकल्प बेहद का, कौन सा संकल्प, सबका कल्याण हो, सदा यह स्मृति रहे, कल का वरदान था ना लास्ट लाइन, सदा यह स्मृति रहे सबका कल्याण हो, सदा यह स्मृति रहे, तो संकल्प में भी कल्याण। तो संकल्प बोल, कर्म, संबंध संपर्क, फिर संस्कार, संस्कार में तपस्या और त्याग। तपस्या भी कौन सी, दो चार घंटे की तपस्या नहीं, दो शब्द बोले तपस्या के लिए बाबा ने, तपस्वी मूर्त और तपस्वी स्वरूप, स्वरूप उसका एम्बॉडीमेंट, और इमेज इमेज ऑफ तपस्या, एक दो घंटे वाली नहीं, दो चार घंटे वाली नहीं, निरंतर हर सेकंड तपस्वी स्वरूप, वो है तपस्या, वो है त्याग। तो बेहद का त्याग, बेहद की तपस्या, मूर्त और सूरत बेहद की, और क्या बेहद का, बेहद की स्थिति,
मूर्त और सूरत।
हाँ उसमें बेहद नहीं लगाया बाबा ने, पर वही मूर्त 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 और सूरत तपस्या। तो बेहद के सेवाधारी अर्थात बेहद का देखना, बेहद का सुनना, बेहद का संकल्प, बेहद के बोल, बेहद के कर्म, बेहद के संबंध संपर्क, और बेहद का त्याग, और बेहद की तपस्या, बेहद की स्थिति। तो ये है मधुबन का बाबा। तो वो है मधुबन का बाबा, तो वैसे ही मधुबन निवासी वो है, तुम धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी ऐसे स्थान पर हो। तो जितना मधुबन निवासियों की महिमा करते हैं, उतना स्वयं को महान महिमा योग्य महान समझते हो। दुनिया वाले मधुबन निवासियों को महान समझते हो, उतना स्वयं महान समझ कर चलते हो।
गुणमूर्त समझते, बेहद के
गुणमूर्त, गुणमूर्त आगे है वो, इसमें कर्म करते समय गुणों का दान करना, फिर उसके बाद में वो आगे है, रुको फिर उसके बाद में मधुबन अलादीन, अल्लाह अवलदीन, अलादीन को बाबा अल्लाह अवलदीन कहते हैं। अलादीन का चिरा, अलादीन नहीं, उसका जो चिरा, हाँ वो अल्लाह अवलदीन का हो या अलादीन को, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसको अलादीन ही लिखे, अलादीन स्लैम्प। तो हम कौन है, वो स्लैम्प, वो चिराग है। ऐसा चिराग स्वयं को समझ कर चलते हो, प्रश्न पूछा है। क्या करता है चिराग, एक सेकंड में जो चाहिए, जो पाना है, जो देखना है, जो पाना है, वो सामने आ जाता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हो एक सेकंड में आत्माओं को। ऐसे हम घर और राज्य दिखा सकते हो, वो भी दिखाते हैं ना, वो चिराग दिखा भी सकता है, और जो पाना है वो पा सकते हो उससे। तो वैसे ही राज्य और घर को दिखा सकते हो। फिर आगे क्या कहा बाबा ने, क्या अंडरग्राउंड की बात, जैसे
नहीं होना चाहिए, चाहिए
चाहिए
रुकावट, वो
हाँ आगे है वो आगे। तो जैसे कोई बॉम्ब अगर कहीं गिरता है तो धरती परिवर्तन होती है, तो तुम क्या करो, अभ्यास का बॉम्ब कहां पर, मधुबन के अंडरग्राउंड में, मधुबन के अंडरग्राउंड में स्टोर है ना वहां पे नीचे, वही ना, हाँ वहां नहीं मधुबन के अंडरग्राउंड में बैठकर ऐसे अभ्यास का बॉम्ब बना, और फिर क्या करो, इसकी रिहर्सल करो, पहले मधुबन में ही इसकी रिहर्सल करो, अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब। फिर वो दो बातें कही ना वहां पर, ये अभी भी क्या कहते हैं कि इसके वाइब्रेशंस फैलाओ चारों तरफ, जितनी जो चीज सूक्ष्म होती है उतनी वो शक्तिशाली होती है, ये छोटी छोटी चीजें पर है बहुत शक्तिशाली। तो अभी जो कहते हो होना चाहिए, अगर ये होना चाहिए अभी भी संकल्प है, तो दुनिया वालों की जो चाहना है वो कैसे पूरी करोगे। होना चाहिए एक तरफ, और फिर हमारी मंजिल और इसके बीच में एक दीवार है, एक रुकावट है, एक व्यर्थ संकल्प के ईंटों की दीवार है। व्यर्थ संकल्प के ईंटों की दीवार कौन सी है, कि अंत में होगा ये संकल्प। एक तरफ है होना चाहिए, व्यर्थ संकल्प के ईंटों की दीवार जो रुकावट डालती है पुरुषार्थ को तीव्र होने से, वो कौन सी है, कि अंत में होगा ये तो होते रहेगा, चलता है ये, चलता है ये, जो है ना संकल्प एक है होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम है, एग्जाम है दो महीने के बाद, तो संकल्प है कि पढ़ना चाहिए, तो फिर तुरंत दूसरा संकल्प की बाद में पढ़ेंगे, अभी तो दो मास है तो ये है व्यर्थ संकल्प की दीवार, जिससे पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है, ढीली हो जाती है, रुक जाती है, रुकावट बन जाती है बाबा ने कहा। तो इसमें क्या करो, एक दृढ़ संकल्प, कौन सा वो दृढ़ संकल्प, मैं करके दिखाऊंगा। ये दृढ़ संकल्प से हाई जंप, ये जो दीवार उत्पन्न कर दी है ना, इसको हाई जंप। दीवार किसके बीच उत्पन्न कर दी है, मैं होना चाहिए और मंजिल, क्या होना चाहिए, बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि, बेहद की ब्रह्मा समान सब कुछ, बेहद का सेवाधारी, अल्लाह अवलदीन का चिराग, वो होना चाहिए, उसके लिए कहा है वो। उसके बीच में बाद में होगा, अभी तो चलता है, अंत में होगा। ये एक व्यर्थ संकल्प की ईंट की दीवार है, इसको जम करो बाबा ने कहा। किससे? कोई करे, कोई देखे, किसी को देखो नहीं, किसी को सुनो नहीं, सहयोग दो संगठन का। फिर कहा ना एक और दो मिलके ग्यारह, बारह, सॉरी ग्यारह तो होते हैं, यहां बारह बोला, एक और दो मिलके बारह। तो ऐसा संगठन का सहयोग हो, ये है पहली सेवा। तो यहां ये पूरा किया बाबा ने, फिर थोड़ा सा
अलग अलग ग्रुप
डिफरेंट इसने मूव किया। फिर कहा जैसे शुरुआत में अलग अलग पुरुषार्थियों के ग्रुप बनाए थे, अभी भी क्या करो, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप, इक्वल जो पुरुषार्थी है उनका ऐसे ग्रुप तैयार करो और उसमें कुछ विशेषता लाओ। कहां से कहां तक? छह चीजों में विशेषता लानी है। सबसे पहले अमृत वेला में क्या करो,
कौन सा संकल्प
विशेष, कौन सा संकल्प हो, ये अमृत वेला। दूसरा क्लास में विशेष किस बात पर अटेंशन हो वो। तीसरा कर्म में कौन सा लक्ष्य रखता हो। फिर शाम में सैर करते समय कौन से संकल्प के वाइब्रेशंस फैलाते हो, मनसा से कौन से वाइब्रेशंस फैलाते हो। नुआ शाम के योग में विशेष अटेंशन या अभ्यास है, शायद विशेष क्या लक्ष्य तो दिन में है और रात का है चेकिंग। ऐसा ग्रुप बनाओ, एक हफ्ते का प्लानिंग करो बाबा ने कहा। वो आगे है, आगे ये चेकिंग में आ जाएगा वो, कि बाबा ने रात में भी वाइब्रेशंस का मंथन, जाग कर भी वाइब्रेशंस का मंथन, वो आगे है, ये अभी इधर का चालू है। तो यहां बाबा ने कहा है कि सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है उसमें कुछ तो भी नवीनता आनी चाहिए। ऐसा कोई ग्रुप बनाओ, उसके ऊपर एक हफ्ता अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, रेस करो कि सबसे पहले अमृत वेला क्या, क्लास में क्या, दिन भर में क्या, घूमते समय क्या, और रात में सोते समय चार्ट देते नुमा शाम के योग में क्या, और छठवा चार्ट चेकिंग में क्या नवीनता,
रिजल्ट और रिजल्ट।
हाँ, तो ये छह के छह चीजें
रेस करो
कि इन सब में आगे जाना है। किसको क्या सुविधाएं मिल रही है उसमें आगे नहीं, इसको ये है तो हमारे पास ये, उसके वो तो हमारे पास वो नहीं। मैं अभी एक मोहिनी बहन का कुछ सुन रहा था, क्लास इंग्लिश क्लास है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है सादगी के बारे में, सिंप्लिसिटी के बारे में, कि ब्राह्मणों ने क्या क्या कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने देखो सारा कुछ छोड़ दिया, पर जहां सिंप्लिसिटी, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जिससे सिंप्लिसिटी ये हो जाती, तो सबसे पहले उन्होंने कहा ये ग्लासेस, सन ग्लासेस। तो जब आप सन ग्लासेस पहन तो नेचुरली कोई आपको आत्मा नहीं देखेगा, पहले ध्यान उधर जाएगा कि ब्राह्मणों ने तो कपड़े तो वाइट पहन लिए पर ये सन ग्लासेस। फिर कहा टोपी के बारे में, फिर ब्रह्मा बाबा को किसी ने कहा कि कोई भी नए नेपाल का ग्रुप आता था तो वो टोपी देते थे, वो टोपी, पर बाबा थोड़ी देर के लिए पहन के निकाल देते थे। तो बाबा के कहा कि बाबा आप टोपी पहना करो ना, जितने प्यार से लाए, दो तीन दिन तो पहनो कम से कम। तो बाबा ने कहा मैं अगर वो टोपी पहन के बैठ जाऊं तो मेरे भक्त कंफ्यूज हो जाएंगे ये कौन सा इसके लिए फिर घड़ी, वॉचेस, अभी बाकी सब तो छोड़ दिया, अभी पैसे हैं कहां तो लगाने पड़ेंगे वॉच, शूज, चप्पल, बैच, बैच भी बड़ा बड़ा होते जाता है ना, सीनियरिटी छोटा फिर छोटा, फिर उसमें कुछ 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 लगते जाता है। तो हाँ, तो वही मतलब वही वाली बात है कि उन्होंने ये सब बातें उसमें बताई है कि हाँ वो तो सबसे लेटेस्ट है मोबाइल। हाँ, वो चाहे आप क्या तपस्या कर रहे हो वो तो बात की, वो तो यही देखते हैं ना क्या क्या है सामने, चप्पल, तो वो पहला ध्यान चप्पल की तरफ जाएगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया चप्पल है, शूज बहुत बढ़िया है, कहाँ से लिए तो ये सारी चीजें आ जाती है। हाँ हाँ, जैकेट, शूज, ये सारा, वो सारा छोड़ दिया संसार, मोह माया श्रृंगार, परंतु ये हेयर स्टाइल नहीं, जो जिसको है वो करते रहते हैं थोड़ी अलग अलग, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर कभी इधर हाँ वो भी करते
हैं। बड़ी गरीब होती डबल ताज क्या है ना, बाल भी नहीं है, बाल भी उड़ रहा
है।
फिर आगे, फिर ये यहाँ
प्रोग्राम का मन नहीं, मन से।
हाँ, मन का संकल्प जो है वो अविनाशी होता है, बाकी प्रोग्राम प्रमाण नहीं। प्रोग्राम किया है, भट्टी रखी है, तीन दिन कर दिया भट्टी खलास, खत्म। वो भट्टी में जो प्रोग्राम बना था, हर दिन भट्टी हो, हमारा प्रोग्राम हम स्वयं तैयार करें, निश्चित करें हर दिन। ऐसा नहीं कि जब उन्होंने वो भट्टी का प्रोग्राम बनाया हम जबरदस्ती जाके बैठे, जबरदस्ती कुछ भी करेंगे तो उसका परिणाम घातक है। कुछ भी जहां दमित किया जाती है भावनाएं, इच्छाएं, कुछ भी वो विस्फोट होता है फिर बाद में उसका। तो ये यहां पूरा किया। फिर बाबा ने कहा मधुबन है सबसे ऊंचा स्तंभ। कितना ऊंचा स्तंभ कि कहां से भी देखो, नजदीक से देखो, दूर से देखो, वो बेहद की सेवा ही वहां नजर आती है। फिर वहां ब्रह्मा बाबा के ऊपर वापस आ गए कि जैसे ब्रह्मा के कदम कदम पर उसको फॉलो करो, जैसे उसने किया वैसे करो। फिर वहां कहा है कि उसने रात को भी जाग कर वाइब्रेशंस का मंथन किया, वैसे तुम भी विचार सागर मंथन करो। रोटी बनाते, फिर है कर्म में योग, फिर है रोटी बनाते हुए भी शक्तिशाली स्वरूप हो। हाथ स्थूल हाथ चलते रहे परंतु मन से शक्तियों का दान देते रहो।
दो सेवा के लिए बताया,
और एक है
डबल
सेवा होती रहे, विश्व सेवाधारी अर्थात सिंगल सेवा नहीं, डबल सेवा। और तीसरा गुणमूर्त होकर सेवा करते रहो तो बेहद का जमा होते रहेगा, डबल जमा होते रहेगा। तो कर्म करते समय गुणमूर्त होकर सेवा करना एक, कर्म करते समय शक्तियों का दान करते रहना, कर्म करते समय स्थिति शक्तिशाली हो, शक्तिशाली स्वरूपों में होकर स्थिति करते रहो, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप। यह कर्म के लिए कहा हुआ है, कर्म हो।
हाँ,
कब बनेंगे, बने हैं ये संकल्प करो, कब बनेंगे नहीं है अभी, बस वो उसको सुबह बताया था ना कि एक विदेशी भारत में आया और उसको देखना था कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। तो एक मूर्तिकार वो छेनी और हथौड़ा लेके ऐसे ऐसे टक टक कर रहा था, वो बोला मुझे ये मत बताओ मुझे मूर्ति कैसे बनती है वो देखना है। तो कहता है मूर्ति तो इस पत्थर में पहले ही है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले ही है, उसके आविष्कृत की जाती है, वो अनावृत की जाती है, उसको तो केवल उघाड़ना है, वो तो पहले ही वहां है, उसको बनाया थोड़ी जाता है, केवल जो अनावश्यक व्यर्थ पत्थर है उसको निकालना है। अगर मूर्ति तैयार करनी है तो बाबा ने कहा हैमर लगेंगे, तो जितने ज्यादा हैमर लगेंगे उतनी अच्छी मूर्ति बनेगी। क्योंकि अगर दस चार मूर्तियां तीन मूर्तियां बन गई उसमें से सबसे ज्यादा कीमत फिर उसकी होगी जो जिसमें सबसे ज्यादा फिनिशिंग हो। तो बहुत अगर अच्छी मूर्ति बनना है, आंखें जिसकी बहुत सुंदर है, नाक सुंदर है, उसको और ज्यादा
टूटनी
नहीं चाहिए, पहले हल्के हल्के, फिर वो जो हल्के हल्के जो है ना विघ्न समस्या माया परिस्थिति ये सब आते रहेंगे, कमेंट्स टॉन्ट्स ये सब 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 जितने सूक्ष्म, ये हैमर तो लगेंगे ना, मूर्ति बननी है तो यज्ञ की मूर्ति कहाँ है दादी को बाबा ने, तो ऐसी बन गई क्या, 80 साल की तपस्या लगी तो बनती है मूर्ति। फिर आगे कहाँ थे हम, हाँ फिर बाबा ने व्यर्थ हाँ नहीं उसके पहले भी और हाँ स्वयं को निमित्त समझो, हरेक नहीं वो बाद में है,
नहीं वही है,
ये कहाँ छोड़ा हमने, हाँ गुणमूर्त, वो पूरा हो गया वहां पर, हाँ सेवा के समय गुणमूर्त हो गया, वो पूरा हो गया। फिर बाबा ने कहा हरेक अपने आप को निमित्त समझे, हरेक अपने आप को निमित्त समझे। हाँ एक पॉइंट और है, उसके बाद अब कौन सा आवाज बुलंद करोगे व्यर्थ को, नहीं वो आगे है, हाँ फिर चलो इसमें ही आ जाते सीधा। यहाँ भी तीन प्रश्न है, तीन नहीं चार प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न कि अगर कोई गलत करता है तो क्या करे, एक दूसरा प्रश्न अगर कोई टक्कर ले तो क्या करे, तीसरा प्रश्न अपमान करता है तो क्या करे, ग्लानी करता है तो क्या करे, और चौथा प्रश्न संस्कारों में अगर टकराव होता है तो क्या करे। वो दो बीच के तीन ही है मोस्टली, कि संस्कार तीन पर एक बाबा ने अलग से जोड़ा, और चौथा अगर कोई जा रहा है और उसको पत्थर आ गया तो आप क्या करो, वो चौथा प्रश्न ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अगर कोई कुछ गलत करता है तो तुम क्या करो बोलो। इसमें तीन चार उत्तर दिए बाबा ने। स्नेह का पानी नहीं, वो तो अपमान के लिए है। स्नेह का पानी अगर कोई टक्कर लेता है तो स्नेह का पानी, क्रोध जिससे शांत हो जाए। आप राइट रहो। सबसे पहला क्या है कि अगर कोई गलत करता है, रॉन्ग करता है, तो फर्स्ट स्टेप है आप राइट रहो। अभी दूसरों की गलतियां दिखती है, अपनी गलतियां नहीं दिखती है, क्योंकि उस समय हमारा सारा ध्यान जो होता है उसकी गलती की तरफ रहता है, और हमारा अपना ध्यान अपनी गलती के से हट जाता है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है स्वयं राइट रहो। दूसरा बाबा ने क्या क्या कहा कि उससे प्रभावित नहीं हो, उसका रंग ना लगे हमको। अगर रंग लग जाए, प्रभावित हो गए, तो क्या हो जाएगा, अलबेले हो जाएंगे। थर्ड स्टेप कौन सी है?
दूसरों को देखने से अलबेले।
हाँ, दूसरों को देखने से अलबेले।
पुष्पावृष
यहाँ नहीं, वो है अपमान के समय। यहाँ बात चल रही है कोई रॉन्ग करता है तो हम क्या करें। समाने की शक्ति धारण करो, संभालो। तो पहला है कि स्वयं राइट रहो, दूसरा है कि प्रभावित ना हो, तीसरा है कि संभालो, और चौथा और एक आगे जाके बोला है कि उसको ये समझो कि ये पर्वशातम है और रहम दिल बन जाओ। ये चार बातें हैं। हाँ वो तो है, नम्रता का, वो टकराव के लिए बोला है। ये वो है कि अगर कोई दूसरा, बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी खुद ले लो कि हम राइट रहेंगे, अपने ऊपर ले लो कि वो हम राइट रहेंगे, वो चाहे रॉन्ग हो परंतु हमें राइट रहना है। कोई क्रोध कर रहा है, नहीं कोई झूठ बोल रहा है और हम क्रोध कर रहे हैं, उसने झूठ क्यों बोला? हमें सत्य से बहुत प्रेम है, हम चाहते हैं कि सब सत्य बोले, पर ये जरूरी नहीं है कि सब सत्य। कोई झूठ बोलेगा, सरासर झूठ, ब्लैटेंट लाए, एकदम संपूर्ण झूठ और वो हमारे सामने सामने, तो तब हमको क्रोध आ रहा है। अभी किसकी गलती है? उसका तो ठीक है, वो तो फिर भी झूठ है खाली, ये तो क्रोध है। जिसका नंबर काम के बाद ही है, काम क्रोध, वो झूठ तो थोड़ा नीचे है। तो दूसरे गलती कर रहे हैं तो हम क्या करें? तो सबसे पहले हमको राइट रहना है, दूसरा प्रभावित नहीं होना है, रंग नहीं लगना चाहिए, तीसरा समा लेना है, चौथा रहम दिल और उसको परवरिश समझना। ये चार चीजें करनी है। अभी दूसरा प्रश्न है कि अगर कोई इंसल्ट करे तो सेंट बन जाओ, अगर कोई ग्लानी करे तो फूलों की वर्षा दे। उसने 10 बोला, आपने 1 बोला, तो वो भी एक बूंद है तो हो गई ना, फिर उसको पुष्प थोड़ी कहेंगे, फूल थोड़ी कहेंगे। अगर कोई टक्कर करे तो स्नेह का पानी दो, स्नेह का ये सबसे महानतम कार्य है अध्यात्म के। ये अगर है तो ही कहा जा सकता है व्यक्ति थोड़ा सा धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक। बाकी आप बीके हो और ये सब नहीं है तो मानेंगे नहीं कोई। जैसे वो उदाहरण दिया था ना, कमला नगर के कोई माता, कौशल्या माता, कमला नगर सेंटर 1957, जो ज्ञान में आई, उसका पति उसे, परंतु वो उसने जैसे ज्ञान में आई पवित्रता की प्रतिज्ञा धारण कर ली, तो उसका पति उसे बहुत तंग करने लगा, उस पर अलग अलग प्रकार के इल्जाम लगाने लगा, परंतु उसके अंदर था। क्यों इल्जाम लगाने लगा? क्योंकि वो पवित्रता का मार्ग उसने चुना। अब काम वासना ऐसी है, अगर उसको रोक दिया जाए तो वो क्रोध का रूप धारण करती है। तो उसने कई तरह के आरोप उसके ऊपर लगाए कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती, तुम ये हो वह हो ऐसे। और एक दिन वो एकदम उसको एक दो बार घर से निकाल दिया, फिर वो एक बार सीधा कमला नगर केंद्र में चला गया। कहाँ है वो मम्मा? मम्मा से मिलता हूं मैं। इतना क्रोध में जगदीश भाई ने अनुभव लिखा है कि मेरे आने से, जगदीश भाई अभी पहुंचे नहीं है, वो गया सेंटर में और पहले तो कुर्सी इधर उधर फेंक दी, फिर वो जो पोस्टर जो लगे थे वो दो तीन फाड़ दिए, फिर वो पर्दे इधर उधर कर दिए, सारा इधर उधर, और बोले मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलना है तुम्हारे। मम्मा थी ऊपर 3rd या 4th फ्लोर पे, सबसे टॉप पर। तो वो तो दो बहने थी, वो डर गई एकदम, वो क्या बोलेगी, इतना क्रोध में। फिर जब गया ऊपर तो मम्मा ने उसे बच्चे, मतलब वो कमरा जो था छोटा ही कमरा था जिसमें केवल एक खाट खटिया थी और एक चेयर थी, मम्मा चेयर पे बैठी थी, मम्मा चेयर से उठी और खटिया पे बैठ गई और उसको वो चेयर पे बिठाया और उसको बच्चे, इतना शांत हो गया, शांति से चुपचाप निकल गया वो। और फिर जगदीश भाई लिखता है कि मैं 10 मिनट के बाद आया, देखा ये क्या है हाल, किसने किया। तो वो है मतलब स्नेह का पानी, क्रोध शांत हो गया, नम्रता का कवच, इस ड्रेस को उतारो नहीं, नम्रता का कवच धारण करो। अगर नम्रता है तो स्नेह और सहयोग सदैव हो जाएगा, मिल जाएगा तुमको। तो वो उसका स्वरूप है। अगर ये नहीं तो उसने क्या कहा, ये ब्रह्मा कुमारी में इनकी मम्मा अच्छी है, ये ब्रह्मा कुमारी अच्छी नहीं है। बाकी कोई अच्छे नहीं है, ये बहुत बड़ी अच्छी है, इनकी जो मम्मा है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मम्मा उसका स्वरूप है, वो अध्यात्म का स्वरूप है। मतलब जो उसमें जो गुण है वो ऐसे है कि सब रेडीमेड है ही, ऐसे कि जैसे उसने प्रयत्न भी नहीं, जैसे सब आ गए उसमें, प्रकट हो गए सारे, ऐसे वो स्वरूप था। ये यहाँ हो गया जी। फिर उसके बाद में है, अगर संस्कारों की टक्कर होती है तो क्या करो, ये नेक्स्ट प्रश्न है, क्या करो। यहाँ सब के संस्कार भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके संस्कार परिवर्तन का तो इंतजार करो, कब तक इंतजार करोगे, तो अभी नहीं होने वाले संस्कार परिवर्तन। ना तो व्यक्ति बदलेगा, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है, बाबा ने कह दिया है। ना व्यक्ति बदलेंगे नहीं, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको बदलना है बस। तो बाबा ने कहा अगर संस्कारों की टक्कर होती है, संस्कार भिन्न भिन्न है, तो स्वयं प्रभावित ना हो। उसमें दो बातें कही बाबा ने, एक तो साक्षी और दूसरा कमल पुष्प समान तुम्हारी स्थिति हो, कमल समान स्थिति और साक्षी होकर रहना है। जैसे सुनते हुए नहीं सुन रहे, जैसे लास्ट संडे में बोला था ना, एक उदाहरण दिया था, कौन सा, जैसे कोई एक्टर है स्टेज पर कोई देखने वाला ही नहीं हो, तो ये है सहयोग, ये सहयोग देना है।
जैसे वाला कोई शो गाली दिया और तुम एक बोला,
हाँ तो वो गए ना,
हाँ।
तो संस्कारों की भिन्न भिन्न है, तो संस्कारों के भिन्न भिन्न होते ये भी नहीं समझो कि इसके संस्कार बदले। बाबा ने तो नीचे यहां तक बोला है कि शब्द से, मुख से, वाचा से और मनसा से भी उसको सुधारने का संकल्प नहीं करो। क्या करो, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है, शुभ भावना, बस शुभ भावना का सहयोग दो। आप उसको बोलने जाओगे, सुधारने जाओगे, तो तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, वो संबंध खराब हो जाएंगे, वो सुधरेगा तो नहीं, कभी नहीं सुधरेगा। ज्ञानियों को रिएक्शन होती है ज्ञान सुनाने से, इसके लिए सावधान। बाबा ने कहा ये जो सावधान है ना, शब्दों से आप नहीं सावधान कर, आप उसके प्रति केवल शुभ भावना रखना है, बस बढ़ते चलो, ये रखो और बढ़ते और बढ़ाते चलो, यही करना है। मतलब बोल से भी किसी को, चलो अज्ञानी को थोड़ा सुन भी लेगा, पर ज्ञानी मुश्किल है, नहीं समझा सकते कोई, अगर वो मुश्किल है, मतलब उसमें टकराव हो सकता है, संबंधों में टकराव। तो बाबा ने कहा सेफ कैसे रहेंगे, साक्षी और कमल समान है तो सेफ रहेंगे, अगर संस्कार भिन्न भिन्न है तो। फिर देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये बोला। फिर वो लास्ट जो दिया, अगर किसी के सामने पत्थर आ जाता है तो क्या करो, एक तो स्वयं पहले क्रॉस कर जाओ, या तो हो सके तो उसको ले लो और उसको पार करो, अगर हिम्मत नहीं है तो चुपचाप स्वयं क्रॉस हो जाओ, आप नहीं रुको। वो पत्थर अर्थात यहां विघ्न, समस्या, माया, विकार या कोई आदत, कोई भी कुछ भी हो सकता है कि हम उसको छुड़ाने जा रहे हैं और खुद ही फंस गए उसमें। तो बाबा ने ये तीन चार बातें कही है, अगर कोई गलत है तो क्या करो, एक, अगर कोई टक्कर लेता है तो क्या करो, अगर कोई ग्लानी करता है, अपमान करता है, इंसल्ट करता है तो क्या करो, अगर संस्कारों की भिन्न भिन्न होते हुए भी अपने आप को बचाना है तो क्या करो, और पांचवा, अगर किसी के सामने पत्थर आता है तो क्या करो। ये ऐसी पांच बातें बताई, और सबका सार अगर देखा जाए तो है कि स्वयं को राइट रखना है, एक, शुभ भावना, शुभ कामना रखना है, नम्रता का कवच धारण करके रहना है, साक्षी रखना है, रहना है, रहम दिल होना चाहिए, और हाँ फिर यह है, स्वयं को क्या कहते हो, कल्याणकारी कहते हो ना, तो जब अकल्याण करने वाले हो तो ही तो करेंगे, अगर अकल्याण करने वाले नहीं है तो कल्याण किसका करेंगे, कल्याणकारी का है कि। तो ये तो सब प्रकार के होंगे यहाँ, परंतु हमें सबका कल्याण करना है, ये है शुभ भावना, शुभ कामना। तो शुभ भावना, शुभ कामना रखना ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है सबके प्रति, सबके प्रति। अरे बाबा एक पॉइंट ये भी रह गया, जैसे तुम दूसरों को कहते हो क्या कि स्वयं को बदलो तो दूसरे बदल जाएंगे, तो ये अभी अभी खुद के लिए है। जैसे सात दिन का कोर्स दूसरे को कराते हो ना, अभी अपने आप को कराओ, जो दूसरे को जो कहते हो ना कि अब थोड़ा समय, अभी अब नहीं तो कब नहीं, ये अपने लिए है, जो जो अभी तक दूसरों को सुनाया अभी स्वयं को सुना, फिर वो ये भी एक बोला ना व्यर्थ के लिए, व्यर्थ सुनना देखना व्यर्थ संग, इसके लिए समय संकल्प वेस्ट होता है, शक्ति संकल्प वेस्ट होती है, समाप्त होती है, इससे भी अभी मुक्त हो जाओ। कौन सा आवाज बुलंद करेंगे, कौन सा झंडा बुलंद करेंगे, तो व्यर्थ का जो रावण है उसको नष्ट करते हैं। सच्ची ये है सच्ची दिवाली। कहा कब की मुरली है, अक्टूबर नहीं नहीं, 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 नहीं। मंथ कौन सा, नवंबर की है ना, 23-11 नवंबर की दिवाली, ये है सच्ची दिवाली। 23 व्यर्थ को नहीं देखो, सुनो संग, ये सबसे मुक्त। तो पूरे मुरली में समान क्या क्या है, सारे मुरली के, मैं अल्लाहउद्दीन का चुनौत, मैं बेहद का सेवाधारी हूँ, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति देखना सुनना बोलना संस्कार त्याग तपस्या सब कुछ बेहद का, बेहद की स्थिति बेहद की बेहद का सेवाधारी, एक मैं तपस्वी मूर्त हूँ। और एक वाक्य रह गया है, मैं तपस्वी मूर्त हूँ, शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाते रहो। हाँ, बीच में जो है ना लास्ट, शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाते रहो, मैं तपस्वी मूर्त हूँ। और उसी में फिर वो है कि किसी को बोल और मनसा से भी नहीं समझो, शुभ भावना रखो, इससे आगे बढ़ो और बढ़ाते चलो। तो मैं तपस्वी मूर्त हूँ, मैं अल्लाह अवलदीन का चिराग हूँ, और मैं फॉलो फादर करने वाला हूँ, गुणमूर्त कर्म करते हुए भी, गुणमूर्त कर्म करते हुए शक्तियों का दान देने वाला, कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्थिति रहने वाला, डबल लाइट फरिश्ता हूँ, और अचल अड़ल अपना साक्षी रहने वाला हूँ, जय जयकार कम्बाइंड स्वरूप हूँ, शिव शक्ति रूप हूँ, हीरो हीरोइन हूँ, और कौन सी खुलती, लवलीन आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुखदायी स्थिति में स्थित आत्मा हूँ, फरिश्ता स्थिति की सीट पर स्थित आत्मा हूँ, और सर्वशक्ति सभी स्थिति में स्थित आत्मा हूँ, और रहन दिल आत्मा। और ये भी बोला है कि दूसरों को शक्तिवान बनाओ उसको, अरे एक तो भूल गया, सहयोग के नोट, दूसरे की गलती नोट नहीं करो, तुम्हारे जेब में सहयोग के नोट हो, सहयोग के नोट दो। ये देखो बाबा ने ये तब कह के रखा था, बीच में सहयोग की मुरली नोट की मुरली चलो देना, सबको लगा था कितनी नई बात बोली बाबा ने, सहयोग के नोट 2010 की लास्ट एक्स्ट्रा मुरली जो चली थी, जो कि होने वाली नहीं थी पर आई थी, बाबा आए थे उसमें लास्ट जो अप्रैल में, तो सहयोग के नोट तुम्हारे जेब में हो, सबको लगा पहली बार सुना ये, अरे ये तो ये 1970 और एक बात है, डिस्कशन नहीं करो बाबा ने कहा, उसका जो गलती देखते हो ना उसकी डिस्कशन नहीं करो, बस उसको सहयोग दो, सहयोग दो, ये है सहयोग देना, उसकी चर्चा नहीं करो, सहयोग देना विशेष देखना है तो विशेषताओं को देखो, अवगुणों को छोड़ो, अगर संबंध संपर्क में आते हो तो देखना है तो विशेषता को देखो, अगर नहीं आते हो तो बाप को देखो, दिखता है तो विशेषता देखो, अगर नहीं देख नहीं जाते हो संबंध को, हाँ कमियों को छोड़ो। इतनी गहरी मुरली है ये, बाप रे इतना इसमें समाया हुआ, एक एक लाइन और एक एक पॉइंट पे, हम एक एक घंटे में पूरी मुरली रिवाइज करने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, एक ही लाइन पे एक एक चर्चा चाहिए इसके ऊपर, एक वाक्य के ऊपर बहुत सारी चर्चा चाहिए, ये कैसे परंतु वो पचाना भी हमको चाहिए ना, उसमें भी हाँ एक वीक का अभी का अब हमारा वैसे तो हाँ नहीं, पहले सोमान हो गए सारे, फिर करते हैं, 5-10 मिनट है हमारे पास। सोमान और क्या क्या थे आज, मैं नम्रता का कवच कवचधारी, मैं नम्रता का ये वही हो गया, मैं नम्र चित्त आत्मा हूँ, ये तो वही हो गया ना, त्याग का भी त्याग नम्रता, तो वही द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नम्रता वहां पे खंडन हो रहा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ बस, वो मैं नम्र चित्त हूँ ये बोलने की आवश्यकता नहीं, वो परिणाम है ये सब करो तो वो होगा, ये सब भाव हो नम्रता अपना निमित्त भाव हो तो वो होगा, निरंकार अहंकार ना हो तो वो होगा, वो परिणाम है, वो जो परिणाम है उसको हम पकड़ ले तो उसका भी अनुभव हो सकता है।
दादी
को भी
मैं नहीं करती,
हाँ
दादी यहाँ जाना है, दादी
दादी थर्ड पर्सन में बात करना है। मैं नहीं करना स्लोगन नहीं वरदान वरदान भी कुछ दिन पहले मुरली का ही लिया हुआ है नंबर वन फरिश्ता और नंबर वन विश्व महाराजन बनने का आधार नंबर वन त्याग महान त्याग तो महान भाग्य तो अब स्वयं को साकार बाप के प्रति समर्पित करो और एक दो लाइन स्लोगन सभी आधार टूटने हैं इसके लिए किसी को देहधारी को आधार नहीं बना एक बाबा ही आधार है बाप को ही आधार बना बाकी सब आधार टूटने सहारे टूटने हैं तो क्या करेंगे एक हफ्ता क्या पूछ सकते हैं इस मुरली क्या था ये मुरली जो अगली मुरली है उसका अध्ययन एक हफ्ता तक करते हैं ताकि वो जब तक आए तब तक उसका थोड़ा हम स्वरूप बने आगे जो मुरली चलने वाली है उसका अध्ययन मंडे से चालू करें तो मंडे से सैटरडे तक थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्योंकि एक इतना भारी माल है ये गरिष्ठ भोजन तो ये एकदम पचाना एक ही दिन में नहीं होता है वो और वो उस दिन पता नहीं क्या क्या हो जाए समय मिले ना मिले और कुछ कुछ कहाँ कहाँ चले जाए उसका अध्ययन थोड़ा 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 मंडे से चालू करना है क्या नहीं चलता है अच्छा ना ना तो चलो जो भी है पता तो चल जाता है हाँ बाबा के टाइम का जो फर्स्ट जो है बाबा आने का तो उसका एक अध्ययन चालू करना और अभी जो आज की मुरली है देखो कल सुबह नई मुरली आ जाएगी तो ये तो गई हाथ से अभी इसको छोड़ो हाँ ये सामान लेना सामान को याद रखना सामान को लेना थोड़ा सा उनको लिखना उसके ऊपर चिंतन करना अध्ययन करना और ये जो चार पांच प्रैक्टिकल बातें जो आई है इसको प्रैक्टिकल करना कि हम क्योंकि हर एक का अनुभव है कि हम जब राइट थे हमने दूसरों को राइट करने की कोशिश की तो उसमें नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं वहां चुप ही रहना है साक्षी रहना है स्वयं हम रॉन्ग हुए दूसरों को करेक्ट करते करते हम रॉन्ग हो गए तो वो जो गलतियां जो की है वो अब नहीं करनी है इस मुरली के आधार से मेन तो वो ग्लानी तो करने वाला इंसल्ट करने वाले कम आएंगे अभी तो मेन जो आएंगे कराए तो हमें हम हमारी इच्छा के बिना कैसे रॉन्ग कराएंगे बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी स्वयं के ऊपर ले लो कि हम राइट रहेंगे अरे हर निर्णय हर बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो ये भी पॉइंट है एक जगह हर बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो ये बहुत अच्छा बात पॉइंट है तो अगर जैसे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करना चाहिए अभी तो संबंध संपर्क में गड़बड़ हो रही है तो हर बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर बैठ कर करो हाँ उसने जो जो किया पर उसका जीवन भी हमारे सामने स्पष्ट हो इसके लिए उसके जीवन का भी अध्ययन करते रहना है जो किताब है उसकी हाँ जीवन कहानी उसका भी धीरे धीरे बीच बीच में अध्ययन चालू रहे नहीं तो फॉलो 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 फादर फॉलो फादर क्या फॉलो फादर ने क्या किया वो तो पता चाहिए ना कि बस ऐसे ही फॉलो फादर खाली नारे लगा रहे फॉलो फादर के तो इस तरह से जो भी बातें आती है उसको प्रैक्टिकल कैसे लाए वो हमको सोचना है ठीक है और वो जो बातें बताई ना सुबह से लेकर रात तक छह बातें बताई वो तो हम कर ही सकते हैं ना इसमें क्या विशेषता है अमृत वेले में क्या संकल्प नवीन क्लास में कौन सा विशेष अटेंशन कौन सा लक्ष्य और नुमा क्षमता घूमते समय वो पुरुषार्थ बाबा ने कहा एक ग्रुप बनाओ जैसे शुरुआत में पुरुषार्थियों का ग्रुप बने थे वैसे वापस बनाओ मतलब इस बारे में जो अभी ये जो कर रहे हैं वही है वो ये उसका स्वरूप है प्रैक्टिकल जो ज्ञान की चर्चा चल रही है वही उसका स्वरूप है कि जिसमें हम सोच रहे हैं चिंतन कर रहे हैं मनन कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं क्या कर सकते हैं हाँ आपस में रूरियान क्यों कर रहे हैं यही तो उसका स्वरूप है क्या हो सकता है बस यही करना है इंडिविजुअल सहयोग स्वतः सबका मिलते रहेगा इंडिविजुअल भी सबको सहयोग ये भी एक शब्द है इंडिविजुअल सबका सहयोग मिलते रहेगा अगर ये करोगे तो देते हैं, विराम देते हैं।